Recording it.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو انہی آیات کی ابھی ہم تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 5 سے پڑھ رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے سلسلہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 109 تک. معارف و مسائل پڑھنے ہم نے ان کے شروع کر لیے تھے، جو آپ کے سامنے سکرین پر شیئر بھی ہوئے ہیں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا فرمانے کا ذکر ہے. آیت کا لفظ معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آیات قرآن یعنی احکام الہیہ کے معنی میں بھی. اس جگہ دونوں معنی کے احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں لفظ آیات سے، اور معجزے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں لفظ آیات سے. اسی لیے ایک جماعت مفسرین نے اس جگہ آیات سے مراد معجزات لیے ہیں، اور 9 کے عدد سے یہ ضروری نہیں کہ 9 سے زائد نہیں ہوں. 9 سے زائد بھی معجزات اور احکامات الہی تو ویسے بھی 9 سے زائد ہی ہوتے ہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی، اس کے اندر احکامات الہی کوئی صرف 9 نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لفظ 9 ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کسی خاص اہمیت کی بنا پر 9 کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اس اہمیت کے اوپر مفسرین نے کیا فرمایا ہے، وہ حضرت نے یہاں پر نقل نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے. یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں تفسیر قرآن میں ایک بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے کزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ علوم قرآن کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، تو انہوں نے یہاں پر 9 آیات سے 9 آیات سے 9 معجزات ہی مراد لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس طرح سے ہیں. نمبر 1، عصائے موسیٰ علیہ السلام جو اژدہا بن جاتی تھی، عصا. اور دوسرا، ید بیضا جس کو گریبان میں ڈال کر نکالنے سے وہ چمکنے لگتا تھا. اور تیسری، جو کل ہم نے آخری چیز پڑھی تھی، زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ابتدا میں ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بالکل نیو بورن بیبی تھے، اور وہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا کہ اپنے بچے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانے کے لیے تم اس کو پانی میں ڈال دو. اور پھر کیا ہوا کہ وہ پانی میں بہتے بہتے جو ہے فرعون کے اپنے محل کے اندر ہی پہنچ گئے. یعنی جس سے بچانے کے لیے پانی میں ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے پاس پہنچا دیا، رائٹ؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. اور پھر وہاں پہ جا کر کے فرعون کو جو ہے نا، وہ دیکھتے ہی یہ شک ہوا کہ کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہے جو کہ مجھ سے بڑے ہونے کے بعد میری سلطنت کو چھینے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، اور اسی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے انہوں نے یہ فرعون کو کہا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ہم اس کا امتحان لے لیتے ہیں. ठीक है, तो उस मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उस इम्तिहान के तौर पर एक तश्तरी के अंदर सोना चांदी और दूसरी तश्तरी के अंदर अंगारे रखे गए, और देखा गया कि ये कौन सी वाली तरफ हाथ डालते हैं। अगर तो ये कोई इतनी बड़े शख्सियत होंगे तो ये अंगारे में हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई वैसा वही बच्चा है या ये कोई ऐसे आम सा बच्चा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम कोई आम से बच्चे तो थे नहीं, वो तो स्पेशल बच्चे थे, तो उन्होंने स्पेशल बच्चों की तरह जो है वो डाला, जो हाथ है ना वो सोने चांदी की तरफ वाली तश्तरी में ही डालने की कोशिश करी। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके इस तरफ कर दिया। तो अंगारों को जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी तरीके से पकड़ करके उसको जो है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करी। ठीक है, हो सकता है कोई कोयला ऐसा हो, अंगारे पूरे के पूरे जल ना रहे हो, एक साइड से जल रहे हो, दूसरे साइड से जो है वो नरम ठंडे हो। बहरहाल उन्होंने जिस तरह से भी उसको पकड़ा और अपने मुंह में डालने की कोशिश करी, जैसे बच्चा किसी भी चीज को पकड़ करके मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो उस कोशिश में इनकी जुबान जल गई, इनकी जुबान जल गई, और इसकी वजह से फिर ये सही से बात नहीं कर पाते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान की लुकनत जो है वो दूर कर दी गई। यहाँ पर मुख्तसरन बयान कर दिया है कि दूर कर दी गई, लेकिन दीगर जुमों पे तफसीर में लिखा है कि ये लुकनत भी पूरी तरह से दूर नहीं की गई थी, पूरी तरह से दूर नहीं की गई थी, थोड़ी बहुत लुकनत बदस्तूर मूसा अलैहिस्सलाम के जुबान के अंदर बाकी रही थी। रब्बि शराह ली सदरी की दुआ मांगने के बाद भी अल्लाह ताला ने पूरी लुकनत अपनी किसी हिकमत की वजह से दूर नहीं फरमाई थी। लेकिन बस इतनी बात इतनी हो गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बात कर सकें फिरौन से। बहरहाल तो ये तीसरी आयत, तीसरी निशानी बयान फरमाई, और चौथी निशानी क्या कि बनी इसराइल के दरिया पार करने के लिए दरिया को फाड़ कर उसके दो हिस्से अलग कर दिए और रास्ता दे दिया। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि ये कोई दरिया, दरिया इन द मीनिंग ऑफ रिवर नहीं था, बल्कि दरअसल गल्फ ऑफ स्वेज थी, गल्फ ऑफ स्वेज। तो उसके लिए चार्ट जो है वो हमारे एक साथी ने हमारे साथ शेयर किया था, तो अभी याद भी आ गया है, तो वो चार्ट अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सके तो हम आपको दिखा भी दें उस चार्ट को, यानी उस मैप को। हाँ माशाल्लाह, मुझे भी नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके सामने एक मैप डिस्प्ले हुआ हुआ है ना स्क्रीन के ऊपर, मर्दों में भी हुआ हुआ है, मर्दों में मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, हाँ हुआ हुआ है। तो इसमें देखें कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर जगह है जिसमें एक ग्रीन बहुत बड़ा सा एरिया नजर आता है, ये पूरा का पूरा मिस्र है, इजिप्ट है। ठीक है, तो ये लोग जो है वो इजिप्ट में फिरौन जो है वो रहता था, और यहाँ से जो है ना ये लोग निकले तो ये ईस्टवर्ड्स गए। ठीक है, यानी राइट साइड की तरफ ये मूव किया इन्होंने, और सामने जो है वो समंदर आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, तो ये जो समंदर आ गया तो अब आगे जो है वो समंदर था और पीछे फिरौन की फौजें आ रही थी इनके ताकुब में, इनको पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए। तो उस वक्त जो है वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वाले थे बनी इसराइल, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्नी इन इन्ना लमुद्रकून, हम तो धर लिए गए, हम तो पकड़ लिए गए, तुमने फिर हमें फंसा दिया। राइट मूसा, तुमने फिर हमें जो है वो फंसा दिया। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया कि नहीं, कि मेरा रब जो है वो मेरे साथ है, वो मुझे यकीनन बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से यही फरमाया कि अपने असा को जो है वो पानी के ऊपर मारो। असा को पानी में जब मारा तो पानी जो है वो दो टुकड़े हो गया, और ये जो मामला हुआ ये सारा का सारा गल्फ ऑफ स्वेज में हुआ। ठीक है, तो यहाँ से फिर होते हुए ये इस जगह पे पहुंचे जिसके ऊपर लिखा हुआ है साउथ साइनाई गवर्नरेट, ये या नॉर्थ साइनाई गवर्नर, यानी साइनाई गवर्नरेट। ठीक है, ये मिस्र का ही इलाका है, मिस्र का ये एरिया है, ये यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ पर इन्होंने जो है वो बड़ा लंबा अरसा इसी एरिया के अंदर गुजारा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये अल तूर भी लिखा हुआ है, अतूर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर शायद ये साउथवर्ड जो है वो मूव किया होगा इन लोगों ने, और ये कोहे तूर तक पहुंचे, ठीक है, इस तरह मूव करते हुए। तो ये बस आपको चाहे बताना था, जजाक उमदा डिस्प्ले करने के लिए। आगे चलते हैं कि ये जो है चौथी निशानी बयान फरमाई, उसके बाद फिर पांचवी निशानी जो है वो टड्डी दल का अजाब गैर मामूली सूरत में भेज दिया गया, टड्डी या टिड्डी, ठीक है। ये लोकस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये ग्रास हॉपर्स की एक बहुत बड़ी सी फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जब आती हैं ना, तो ये ऐसे आती हैं कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इवन सूरज की रोशनी जो है वो छुप जाती है, ठीक है। और ये आकर के इवन आज भी कभी कहीं से खबर आती है कि टिड्डियों के जो है वो लश्कर आ रहा है, तो ये आकर के पूरी पूरी फसलें जो है ना वो खा जाती हैं, ये बर्बाद कर देती हैं। चंद साल पहले ये आया था और इवन पाकिस्तान में भी पहुंचा था, शायद इंडिया तक भी गए थे ये, और उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। तो इनके ऊपर टिड्डी दल के भी अजाब आया, और गैर मामूली सूरत में, यानी जो आम तौर पे मामलात होते हैं वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही एक्सेप्शनली एक्सेप्शनल तरीके से ये आया था कि इन्होंने जो है वो उनकी उनकी सारी चीज़ों को खराब कर दिया था। फिर छठी आयत, वो तूफान भेज दिया गया, ठीक है, यानी दरिया नील का पानी जो है ना वो अपने बैंक से वो ओवरफ्लो करके जो है वो इनके घरों को और इनके जो है वो खेतों वगैरह को, खलियान वगैरह को बर्बाद किया गया। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी, और ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से अजाब था इनके ऊपर, किस वजह से कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रहे थे। फिर सातवीं आयत के बदन के कपड़ों में बेहद जुएं पैदा कर दी, ठीक है। अपने कपड़ों के अंदर जो है वो इंसान के जब बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े पैदा मारे, तो एक अगर कीड़ा आ जाए कपड़े के अंदर तो चीखें निकल जाती हैं, लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, और इनके जो है ना वो कपड़ों में इस तरह से बेहद जुएं पैदा कर दी गई, जिनसे बचने का कोई रास्ता ना रहा। हर दफा जब ये मामला होता था तो ये लोग आजिज आ करके फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि आप दुआ कीजिए कि ये अजाब हमारे ऊपर से टल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है इसी उम्मीद के ऊपर कि ये लोग बात मान लेंगे, ईमान ले आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे और वो अजाब जो है वो उनके ऊपर से हटा दिया जाता था। आठवां अजाब, मेंढकों का एक अजाब मुसल्लत कर दिया गया कि हर खाने पीने की चीज में मेंढक आ जाते थे, फ्रॉग्स या टोड्स जो भी थे, तो वो ये भी एक अजाब था, बहुत बड़ी तादाद में मेंढकों का अजाब। फिर उसके बाद नवा और आखिरी खून का अजाब भेजा गया कि हर बर्तन और खाने पीने में खून मिल जाता था, ठीक है। यानी बिल्कुल, यानी जिसकी ना कोई कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है, ऐसे कोई काम हो जाना, ठीक है, तो ये फिर मौजजा कहलाता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे थे। तो लास्ट वाले का वाकया बताइए, वाकया बताइए, वाकया तो सब मेरे ध्यान में नहीं है, बाकी जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, मेंढक आया था ना ये लास्ट वाला खून वाला वाकया। अच्छा, और एक सही हदीस के मजमून से मालूम होता है कि यहाँ आयात से मुराद अहकाम इलाहिया है, ठीक है। तो तीसरा आयात जो है वो सही हदीस के एक मजमून से ये भी मालूम होता है कि यहाँ मुराद जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म है, ठीक है, कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म इन तक भेजे, और वो हुक्म जो है वो पक्की दलील के साथ भेजे कि ये वाकई अल्लाह ताला के हुक्म है, लेकिन इन्होंने जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों का इनकार कर दिया, यानी ये मानने से कि ये अल्लाह के हुक्म है, ठीक है, ये मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो कहते क्या है फिर कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये तो मूसा ने अपनी तरफ से बना लिया, ठीक है, ये गढ़े हुए जो है ना उन्होंने गढ़ लिए हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, ये अपनी तरफ से जो है ना वो अपनी, यानी क्या कहते हैं उसको, दुकान चमकाने के लिए, ठीक है, अपनी जो है ना वो बादशाहत, अपनी जो है वो हुकूमत जतलाने के लिए उसने अपनी तरफ से जो है ना ये हुक्म बना लिए और उनको अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि ये अल्लाह ताला के हुक्म नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला को ये लोग मानते थे, अल्लाह ताला को ये लोग जानते थे, ठीक है, तो इन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ये जो हदीस है कि ये 9 आयात से मुराद अल्लाह ताला के हुक्म थे, तो ये हदीस अबू दाऊद व नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा में, यानी ये जो सही हदीस की किताबें हैं, सहाय सित्ता में से ये सारी किताबें हैं, अबू दाऊद व नसाई, तो इनमें बसनद सही हजरत सफवान बिन असाल रजी अल्लाह ताला अन से मनकूल है, ठीक है। सेम क्या लिखा इन्होंने कि सेम कमेंट्स आर मेड टुडे अबाउट द उलमा, कि उलमा ने जो है वो अपनी तरफ से अल्लाह के हुक्म बना लिए हैं, हालांकि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो उन्होंने भी करी, तो चेहरे बदल जाते हैं लेकिन निज़ाम नहीं बदलते, लोगों की सिफतें, लोगों की हरकतें नहीं बदलती, चेहरे बदलते रहते हैं, कई हज़ार साल गुजर चुके हैं लेकिन वही तौर तरीके के, किसी बात को नहीं मानना है तो अब जो है ना उसके लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी सी एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई दलील जो है वो बनाओ कि भाई ये तो असल में हुक्म है ही नहीं, ये तो बस मौलवी साहब ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, पर्दा वर्दा नहीं होता, मौसीकी जो है वो हराम नहीं होती है, ये मौलवियों ने, उलमा ने जो है वो बना लिया है ऐसा। तो यही चीज़ जो है वो ज़माने में भी चलती थी। तो ये जो हदीस है ये अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी वगैरह में मनकूल है, हजरत सफवान बिन असाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो उस हदीस के का तर्जुमा भी यहाँ पे लिखा, फरमाते हैं कि एक यहूदी ने अपने एक साथी से कहा कि मुझे उस नबी के पास ले चलो, ठीक है, यानी बाकायदा अपने साथी से कह रहा है कि मुझे उस नबी के पास, यानी एक्नॉलेज करते हुए कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के नबी हैं, ऐसे उसने बात करी अपने साथी से। तो साथी ने कहा कि उनको नबी ना कहो, अगर उनको खबर होगी कि हम भी उनको नबी कहते हैं तो उनकी चार आंखें हो जाएंगी, यानी उनको फख्र और मुसर्रत का मौका मिल जाएगा कि देखो यहूदियों ने भी मुझे नबी मान लिया है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो सर चढ़ जाएंगे, ठीक है ना, वो तो उनका तो सीना चौड़ा हो जाएगा, ये इस किस्म के मुहावरे होते हैं ना, असल में तो सीना कोई चौड़ा नहीं हो रहा होता, ज्यादा से ज्यादा एक इंसान स्ट्रेट होके खड़ा ही हो सकता है, सीना जो है वो जितना है उतना ही रहता है, चौड़ा तो नहीं हो जाता उससे। और सर चढ़ जाना ये भी एक मुहावरा ही है, उसी तरीके से अरबी जुबान के मुहावरे का यहाँ पे मफहूम लिखा है कि चार आंखें हो जाएंगी, ठीक है, यानी बड़ा उनको फख्र होगा कि देखो यहूदियों ने भी मुझे नबी मान लिया, जबी तो आपस में मुझे नबी के तौर, नबी के नाम से मुखातब कर रहे हैं। बहरहाल उसने, इन दोनों ने आपस में फैसला किया कि हम चलते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है। फिर ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो 9 आयात बय्यिनात दी गई थी वो क्या है। सही, पीछे भी सूरह बनी इसराइल के अंदर हम ये सारी बातें कई दफा पढ़ चुके हैं कि जो मुशरिकीन थे और जो यहूद थे ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आते रहते थे और आप को टेस्ट करते रहते थे, ठीक है, कोई ना कोई सवाल पूछ करके, माजी के बारे में, अंबिया के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछ करके, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कीजिए, वो क्या वाकया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो ये भी क्यों पूछा था, टेस्ट करने के लिए, क्या ये सही जवाब देते हैं क्या ये गलत जवाब देते हैं। उसी तरह से पूछा कि रूह क्या चीज होती है, राइट, रूह क्या चीज होती है, तो अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिलवा दिया। और ये असहाबे कहफ कौन थे और जुलकरनैन कौन थे, राइट। तो उसी तरीके से एक सवाल जो है उन्होंने इस मौके पर भी आकर के पूछा कि ये जो 9 आयात दी गई थी वो क्या थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ठीक है। इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को ये जवाब जो है पहले से या तो बता दिया गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से पहले से बता दिया गया था, या उसी वक्त इमीडिएटली आकर के नबी अलैहिस्सलाम को जो है जवाब बता दिया गया। दीगर वाकयात में आपको पता है कि असहाबे कहफ के बारे में जब पूछा और रूह के बारे में जब पूछा, जुल्कनैन के बारे में जब पूछा, तो नबी अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं मालूम था। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं कल बताऊंगा। और इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से इंशा अल्लाह निकलना रह गया। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पता थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर के किताबें खंगाल करके जवाब नहीं देना है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई किताबें नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा टीचर भी नहीं था कि भागे भागे चले जाते और उससे पूछ करके जो है वो अगले दिन लोगों को जवाब दे देते। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को 100% ये बात पता थी कि अल्लाह ही ने मुझे जवाब दिलवाना है, भिजवाना है जिब्राइल के वास्ते से। ठीक है, तो दिल में तो ये बात थी कि अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा तब मैं नो को जवाब दूंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जुबान से इसका इजहार नहीं किया। इस बात के ऊपर देखें कैसे जो है ना, वो जो जो बड़े होते हैं ना, जो मुकर्रबीन होते हैं, तो उनकी कोई ऐसी लग्जिश भी जो होती है ना, जो कि उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं करी होती है, ठीक है, कोई उनकी नीयत की खराबी नहीं होती है, बस एक भूल हो जाती है, अल्लाह ताला उसके ऊपर भी जो है वो उनको फिर उनकी तरबियत फरमा देते हैं, क्योंकि मुरब्बी का तो यही काम होता है ना, अल्लाह ताला मुरब्बी है, तरबियत करने वाले। तो क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जवाब नहीं अता फरमाया, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, हत्ता के 15 दिन तक जो है वो जवाब नहीं मिला। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लोग कितना टीज करते होंगे, कितना जो है वो मजाक उड़ाया करते होंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के उनका, कि देखो देखो ये हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं, ये हैं जो कि कहते हैं कि मेरे ऊपर वही आती है, इन्होंने कल कहा था, इन्होंने परसों कहा था कि मैं बताऊंगा, और देखो इनको पता ही कुछ नहीं, नहीं इन्होंने बताया ही कोई नहीं, तो नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, ना तो इन्होंने वादा की, अपने वादे की को पूरा किया, ठीक है ना, ना इनके पास जो है वो वही आई। तो क्या क्या उस वक्त हाल होगा नबी अलैहिस्सलाम का। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने लेकिन इन सब के बावजूद, कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी लेकिन इन सब के बावजूद, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम डिड नॉट कम अप विद एन आंसर, नबी अलैहिस्सलाम डिड नॉट मेक अप एन आंसर टू सेव हिज फेस, टू सेव हिज फेस। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में जब आप फंस जाते हैं ना, तो फिर झूठ निकल जाता है, राइट, हम अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि झूठ निकल जाता है, यानी इन रियलिटी क्या, हम झूठ बोल देते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी जो है वो मुश्किल आई, नबी अलैहिस्सलाम का पूरा जो जो पर्पस था कि अपनी नबुवत का लोगों से इकरार करवाएं और इस अपने ऊपर जो है वो लोगों को ईमान पे लेकर के आए, राइट, यही नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद था ना। ठीक है, वो पूरा का पूरा मकसद जो है वो उस वक्त एट स्टेक हो गया था, इट वाज ऑन द लाइन, राइट, कि अब लोग जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम की जो रेपुटेशन बनी हुई थी, सादिक की, अमीन की पूरी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी, तो फिर नबुवत का काम कैसे करेंगे, कैसे नबुवत का काम करेंगे, कैसे लोगों से तवक्कु करेंगे कि आप सल्लम की बात को तस्लीम करें, राइट। लेकिन इतनी सिचुएशन, इतनी इतनी मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला, राइट, बहाने नहीं बनाए और अपनी तरफ से कोई जवाब घड़ नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो फौरन झूठ की तरफ जाते हैं, फौरन झूठ की तरफ जाते हैं, फौरन ऐसे ऐसे अल्फाज कहना शुरू कर देते हैं जो कि हकीकत नहीं होते हैं। वाई टू सेव आवर फेस, राइट, अपने आप को बस बचाना है, लोगों के सामने जो है ना वो कहीं रुसवा ना हो जाएं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारी जो है वो इज्जत जो है वो दांव पे लग जाएगी, चलो झट झूठ बोल दो, फौरन झूठ बोल दो, राइट। तो ये कितना ज्यादा जो है वो, क्योंकि झूठ बोलना जो है वो अल्लाह ताला के हक की खिलाफ वर्जी है, अल्लाह ताला की हक तलफी है झूठ बोलना। ठीक ठीक है। और ये झूठ बोलना जो है ना, ये इससे होता क्या है कि इससे फिर हमारे जो है ना, जो जो हमारी इबादतों की वजह से जो हमें फायदे मिलने चाहिए थे, जो हमें अल्लाह ताला की मदद मिलनी चाहिए थी, जो रूहानियत मिलनी चाहिए थी, राइट, तो वो रूहानियत जो होती है ना, ये झूठ बोलने की वजह से ये रूहानियत बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है ये रूहानियत हमारे पास। तो इसी वजह से ये होता है कि हम इबादतों पे इबादतें कर रहे हैं, नमाजों पे नमाजें पढ़ रहे हैं, तिलावतों पे तिलावतें कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ झूठ बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि वो रूहानी ताकत जो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए थी ना, कि जिसकी वजह से हमारे अंदर इस्तकामत आती, जिसकी वजह से जो है वो हम और अल्लाह ताला को राजी करने के अमल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जुबान में भी तासीर आती, जिसकी वजह से जो है वो हमें दुनिया में और आखिरत में इज्जतें मिलती, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, राइट, झूठ बोलने की वजह से। और झूठ बोलना एक ऐसी चीज है कि जिससे हमारे जो है ना वो कोई इरादे नजर नहीं आते तौबा करने के, तौबा करने के कोई इरादे नजर नहीं आते। दूसरी चीजों से हम तौबा कर लेते हैं, झूठ बोलने से तौबा करना जो है ना, ये इसके ऊपर साजिश को याद आता है कि हमारे हजरत दामद मकातुम ने कुछ अरसा पहले एक बयान किया था मगरबी तहजीब के बारे में, ठीक है, मगरबी तहजीब के बारे में। तो वो बयान आजकल हम अपने नौजवान साथियों के साथ जो है वो उसको पढ़ रहे हैं, और क्योंकि अब किताबी शक्ल में वो हो चुका, तो हम उसको जरा समझा रहे हैं। तो उसमें ना एक मुकाम पे हजरत ने मगरबी तहजीब के बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी, यानी फरमाई थी, तो बाद में किताब में लिखी गई, ठीक है। वो ये थी कि ये जो मगरबी है ना, तो ये लोग हर चीज छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये लोग अपनी जो है ना वो दूसरी चीजों को छोड़ सकते हैं। सामने वो किताब भी है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये सुअर का गोश्त खाना छोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काफिर हैं, वेस्टर्न यूरोपियंस अमेरिकन, जो कि सुअर का गोश्त नहीं खाते, ठीक है, पोर्क नहीं खाते, किस वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से छोड़ देते हैं, रेड मीट है जी, जो भी है, ठीक है ना, उसी वजह से छोड़ देते हैं। शराब पीना, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं या साइंसदान हैं या बड़े ओहदों पर फायज हैं, वो शराब नहीं पीते, वो उसको अच्छा नहीं समझते कि बंदा ज्यादा नशे की हालत में ना, हाँ पार्टी में कभी जो है वो थोड़ा सा सिप ले लिया, थोड़ा सा जो है वो लोगों के साथ जो है वो तो जिससे नशा नहीं होता उतना थोड़ा सा पीने से, ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो है ना ये शराब नोशी को तर्क कर देते हैं। जुआ खेलना, जुए को छोड़ना ये भी उनके लिए आसान है, ठीक है। सूदखोरी, सूदखोरी को छोड़ने के लिए भी वो तैयार हो सकते हैं, चुनाचे आज के उन्हीं के मुल्कों के बैंकों ने बिला सूद बैंकारी के नाम से मुस्तकिल शोबे बनाए हुए, राइट, बिला सूद बैंकारी के शोबे नॉन मुस्लिम वेस्टर्न बैंक्स ने जो है वो बनाए हुए हैं। और ये जो बयान है ना, ये आज से कोई 25 साल पुराना बयान है, 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब तो और भी ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सारे जो गुनाह हैं उनको ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के लोग हैं या वो छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग इनमें से। और उसके अलावा बहुत सारी अच्छी आदात जो मुसलमानों की थी वो ये अपनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये सब कहने के बाद फिर हजरत ने आगे ये फरमाया कि लेकिन एक बात ऐसी है कि जिसको छोड़ने के लिए वो कभी राजी नहीं और ना होंगे, ठीक है, एक बात ऐसी है कि जिसको छोड़ने के लिए वो कभी राजी नहीं हुए और ना आगे जाकर के राजी होंगे, वो क्या बात है, वो है बेहयाई और मौसीकी, बेहयाई और मौसीकी। इसको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, यानी शराब छोड़ना उनके लिए आसान है, सुअर छोड़ना उनके लिए आसान है, सूद छोड़ना, जुआ छोड़ना उनके लिए आसान है, लेकिन बेहयाई और मौसीकी को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे वो कभी, ठीक है। तो अब आप देख लें ना, तो उन्होंने खुद छोड़ना है, बल्कि वो हमारे अंदर भी बेहयाई और मौसीकी को दाखिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और बड़ी हद तक कामयाब भी नजर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेहयाई शुरू कहां से होती है, बेहयाई शुरू कहाँ से होती है, जरा अगर हम आपसे पूछें, वैसे तो हमारी क्लास में अक्सर जो है वो पूछा भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे हम ज्यादा आप लोगों से सवाल नहीं कर रहे। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि बेहयाई शुरू कहाँ से होती है? इन्होंने लिखा सॉन्ग्स से, यानी आप कहना चाह रही हैं म्यूजिक से शुरू होती है, ठीक है? नहीं, म्यूजिक के बगैर भी शुरू हो सकती है, ठीक है? बेहयाई की बिल्कुल बुनियाद कहाँ पे पड़ती है? जी, बेपर्दगी से, राइट? बेपर्दगी से बेहयाई की इब्तिदा होती है, वही बेपर्दगी फिर आगे बढ़ती है और इवेंचुअली वो बेहयाई, बल्कि जो हया वाले लोग हैं उनके सामने अगर आप बात रखें तो बेपर्दगी इटसेल्फ इज बेहयाई, ठीक है ना? बेपर्दगी इटसेल्फ इज बेहयाई, सही है? आप किसी पर्देदार औरत से तवक्को नहीं कर सकते कि वो लोगों के सामने अपना चेहरा खोल देगी और लोगों के सामने जो है वो अपने बाल खोल देगी या लोगों के सामने अपने बदन का कोई हिस्सा खोल देगी। नहीं, इससे पहले वो चाहेगी कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर दफन हो जाऊं, इससे पहले कि गैर महरम मर्दों के सामने जो है वो मेरा वजूद खुले। तो इसको हया कहते हैं, इसको हया कहते हैं, ठीक है? तो बेपर्दगी इज एक्चुअली टेंट अमाउंट टू बेहयाई, सही? तो इसको ये लोग जो है वो नहीं छोड़ सकते। नहीं, तालीमी निज़ाम वगैरह जो है ना, ये जरूरी नहीं है। तालीमी निज़ाम होगा तभी बेहयाई आएगी, या म्यूजिक होगा तभी बेहयाई। हाँ, म्यूजिक जो है इट लीड्स टू बेहयाई ऑल्सो, ठीक है ना? क्योंकि म्यूजिक से जो है ना वो दिल के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिना के जज्बात पैदा होते हैं, भड़कते हैं इंसान के जज्बात, ठीक है ना? लेकिन उसके बगैर भी भड़क सकते हैं, म्यूजिक के बगैर भी भड़क सकते हैं, ठीक है ना? जब दूसरे जेंडर के साथ जो है वो आपकी मिक्सिंग होती है, जैसे उन्होंने लिखा ना मिक्स गैदरिंग, राइट? जब दूसरे जेंडर के साथ मिक्स मिक्सिंग होती है तो यहां से बेहयाई पैदा होती है, इसी को बेपर्दगी कहते हैं। बहरहाल, बात तो असल में कुछ और हो रही थी कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये हर चीज छोड़ सकती है, यानी ये हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कभी भी तैयार नहीं, बेहयाई और मौसीकी। जब इस साजिश ने ये बात पढ़ी ना, तो इस आर्टिस्ट के दिल में यही ये बात आई कि बिल्कुल यही मामला हमारे साथ भी है, राइट? बिल्कुल इसी तरह का मामला हमारे साथ भी है। हम हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सिवाय झूठ बोलने के, झूठ छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे, राइट? हम जो है ना वो दाढ़ी मुंडाने वाले गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, राइट? हम कपड़ा ओढ़ने के, ना कपड़ा पूरा पहनने के गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरे कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, राइट? हम जो है वो टुकने को जो है ना वो शलवार से छुपाने के गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शलवारें जो है ना वो टुकने से ऊपर कर लेते हैं, राइट? और इसके अलावा हम मस्जिद ना जाने के गुनाह से तौबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं, राइट? और भी इस तरह के बहुत सारे गुनाहों से तौबा करने के लिए जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, इंडो पाक सिविलाइजेशन, खुसूसन पाक, ज्यादा पाकीज़ा जो लोग है, जो लोग है ना पाक, राइट? तो ये बहुत सारे गुनाहों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, यानी उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन झूठ छोड़ने के लिए, झूठ छोड़ना एक ऐसी चीज लगती है कि जिसके लिए हम कभी राजी नहीं होंगे और ना नहीं होते हैं और ना जो है वो आगे जाकर के राजी होने के कोई चांस नजर आता है। लेकिन मसला ये है कि जब तक झूठ नहीं छोड़ेंगे ना, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, रूह को ताकत नहीं मिलने वाली है। नफ्स खुश हो रहा है, नफ्स को ताकत मिल रही है कि हाँ मैं कितना नेक बन गया, हाँ मैं कितनी जो है मैंने इबादतें करनी शुरू कर दी, हाँ मैंने कितनी तिलावतें करनी शुरू कर दी, हाँ मैंने कितने जो है वो नफली रोजे रखने शुरू कर दिए, हाँ मैं कितने जो है वो हज करके आ चुका हूँ, हाँ मैं कितने जो है वो उमरे करता रहता हूँ, राइट? ये नफ्स की ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो रही है, नफ्स जो है वो मोटा हुआ चला जा रहा है, रूह तो उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक झूठ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इरादा करते हैं ना भाई, इरादा करने पर एक नेकी मिलती है। तो आज सब के सब जो है ना वो ख्वातीन और मर्द, बच्चे और बूढ़े, सब इरादा कर लें अल्लाह ताला, मुझसे कोई जरूरत नहीं आपको इरादा करने की, अपने परवरदिगार से, अपने खालिक से, उससे जो के अंदर के हालात को जानता है, सोचों को जानता है, फिक्रों को जानता है, उससे इरादा कर लें कि ए अल्लाह मैं झूठ पे तौबा करता हूं, मैंने आज तक जितने दफा झूठ बोला है मैं उस पर तौबा करती हूँ, और आपसे मैं अपने दिल में मुसम्मम इरादा करती हूँ, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये मेरा इरादा है, अब इसके ऊपर अमल करना ऐ अल्लाह मेरे इख्तियार में नजर नहीं आता, क्योंकि मैं आदी, मैं हैबिचुअल लायर बन चुका हूं, मैं आदतन झूठ बोलने के ऊपर आ चुका हूं। अब आदत को छोड़ना जो है ना, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह मेरे बस में नहीं है, आपके बस में तो है। मेरे बस में छोड़ना नहीं है, आपके बस में छुड़वाना है, ऐ अल्लाह आप छुड़वा दीजिए, ऐ अल्लाह आप झूठ को छुड़वा दीजिए। राइट, तो अल्लाह ताला के सामने अपने आप को ऐसे पेश करेंगे ना, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है झूठ छुड़वा देना हमसे। राइट, गमे हयात के साए मुहित ना करना, गमे हयात के साए मुहित ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का, मुझे झूठ का मौका नसीब ना करना। ऐसे अल्लाह ताला से दुआ करें। राइट, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं बोला दुआ मांगने। राइट, फिरौन के दिल में अल्लाह ताला ये बात पैदा कर सकते हैं कि हाँ मूसा को जो है ना वो अपने महल के अंदर प्रवेश करने के लिए वो तैयार हो जाए, फिरौन की बीवी के दिल में मूसा अलैहि सलाम की मोहब्बत डाल सकते हैं, तो हमें जो है वो झूठ के मौकों से क्यों नहीं बचा सकते, हमें इस इम्तिहान से क्यों नहीं बचा सकते। राइट, लेकिन हम अपने आप को पेश तो करें ना अल्लाह ताला के सामने, हवाले तो करें ना अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला से माफी मांग करके फिर मदद तो मांगे ना, तब बात बन जाएगी। ठीक है, तब हमें रूहानी ताकत मिलेगी कि जिसकी वजह से जो हमारे अंदर दूसरी रूहानी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं ना, गुस्सा जिसके ऊपर हम चाहने के बावजूद काबू नहीं पा पाते हैं, और जग जा बेजा जो है वो हम गुस्सा उतारते हैं, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, हमें इस गुस्से पे काबू पाने के लिए रूहानी ताकत की जरूरत है। ये रूहानी ताकत कैसे आएगी? राइट, ये झूठ से बचने के जरिए से रूहानी ताकत आएगी। उसी तरह से दीगर भी जितने भी ऐसे मामलात में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह से ये लोग जो है ये आजमाइशी सवालात ले लेकर के आते रहते थे, तो अभी भी लेकर के आए। इस दफा जो है वो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को पहले से इसका जवाब बज़ाहिर बताया हुआ था, तो आप सब ने बताना शुरू कर दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, चोरी ना करो, जिना ना करो, जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसको नाहक कत्ल ना करो, किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल व सजा के लिए उसे पेश ना करो, जादू ना करो, सूद ना खाओ, पाक दामन औरत पर बदकारी का बुहतान ना बांधो, मैदान जिहाद से जान बचाकर ना भागो। ठीक है, ये 9 जो है नबी अलैहिस्सलाम ने वो अहकामात बयान फरमा दिए, और फिर फरमाया कि ए यहूद, खास कर तुम्हारे लिए ये भी हुक्म है कि यौम सब्त यानी सनीचर, सैटरडे जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि जो खास अहकाम तुम्हें दिए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करो। ठीक है, तो जब इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनकर दोनों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पांवों को बोसा दिया और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हें मेरा इत्तबा करने में क्या चीज़ रोकती है। ठीक है, यानी मेरा दीन इख्तियार कर लेना, मेरा कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब क्या चीज़ रुकावट है जब तुम गवाही दे रहे हो मेरे सामने? क्या मतलब कि मेरे सामने तो गवाही दे रहे हो लेकिन दूसरों के सामने इस बात का इकरार करने से तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है? ठीक है, तो ये लोग कहने लगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की थी कि उनकी जुर्रियत में हमेशा नबी होते रहेंगे, और हमें खतरा है कि अगर हम आपका इत्तेबा करने लगेंगे तो यहूद हमें कत्ल कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में इस आजिज़ की तो इल्म नहीं है कि ये दोनों वाकई मुसलमान हुए या ये लोग मुसलमान नहीं हुए। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग मुसलमान नहीं हुए तो फिर उस वक्त ये कहा जाएगा कि कहते हैं ना बस बहानेबाजियां करना। ठीक है ना, कि भाई हमें कत्ल कर देंगे। अच्छा, अब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला वो भी तो यहूदी थे, वो तो मुसलमान हो गए थे, और शायद हजरत मैमून रजी अल्लाह तआला, वो भी तो यहूदी थे, वो भी तो मुसलमान हो गए थे, उनको तो उनके लोगों ने कत्ल नहीं किया। ठीक है, तो अब इस तरह से कहना कि जी हम चूंकि लोग हमें कत्ल कर देंगे इस वजह से मुसलमान नहीं होते, तो फिर ये बहानाबाजी कहलाएगी। ठीक है, और आई बाएं शाएं करना कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो दुआ करी थी कि उनकी औलाद के अंदर नबी पैदा हो, तो आप तो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है, तो हम इस वजह से जो है वो आपके ऊपर ईमान नहीं लेकर के आते, तो उसको बस यही कहा जाएगा कि उल्टे सीधे जो है ना वो उजरे गुना बदतर अज गुना, अपने गुनाह का जो है ना वो जब इंसान जस्टिफिकेशन पेश करता है ना, तो वो गुनाह से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। ठीक है, चूंकि ये तफसीर सही हदीस से साबित है, इसलिए बहुत से मुफस्सरीन ने इसी को तरजीह दी है, यानी इस आयात से मुराद जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात मुराद है। इसी तरह से कई जगह पर कुरान मजीद ने भी जो आयात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अपनी आयात का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो वहां पर भी मुफस्सरीन का यही कौल है कि आयात से मुराद कुरान मजीद के अहकामात हैं। ठीक है, तो आयात का इनकार का मतलब अहकामात का इनकार। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम अल्लाह ताला के किसी हुक्म का इनकार करते हैं, ठीक है, तो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये कहना कि हाँ कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, वो तो करते हैं, लेकिन एक हुक्म जो कि कुरान मजीद से साबित है, अगर हम उस हुक्म का इनकार करें, तो वो भी आयात कुरानी का इकरार का इनकार ही है, आयात कुरानी का इनकार ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस सही हदीस से तौरात की बात हो रही है कि तौरात के अहकाम ही मुराद है। अच्छा, फिर उसके बाद यबकूना व यजीदुहुम खुशुआ, यबकून बका यबकू, बका यबकी रोना। ठीक है, तो वो लोग रोते हैं और उनका खुशू जो है वो बढ़ जाता है। तफसीर मजहरी में है कि तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है, यानी इंसान रोएगा तो उसको सवाब मिलेगा, अगर नहीं रोएगा तो गुनाह नहीं है, मुस्तहब का ये मतलब होता है। ठीक है, करेगा तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है। जब भी हमारे बड़े फरमाते हैं कि अगर रोना ना भी आए ना, तो रोने की सूरत तो बना लो कम से कम। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही है और तुम हंस रहे और तुम मुस्कुरा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में कहें, या पता नहीं और कितना अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, कि वो जो मुकाबला हुस्ने क़िरात होता है, राइट, मुकाबला हुस्ने क़िरात, तो बदकिस्मती से उसमें ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि जो के कारी जो है वो जहन्नुम के अजाब की आयतें पढ़ रहा है, और जो जज साहब बैठे हुए हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस बात पे खुश हो रहे हैं, किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो तिलावत बड़ी अच्छी कर रहा है, कारी तिलावत बड़ी अच्छी कर रहा है, इसके ऊपर जो है वो जज साहब खुश हो रहे हैं, या सामईन में जो लोग बैठे हुए हैं, नाजरीन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर खुश हो रहे हैं। कौन सी चीज पढ़ी जा रही है, किस चीज की वो तिलावत कर रहा है, राइट, वो तो इंतहाई खौफ दिलाने वाली, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो है वो हसन तिलावत के मुकाबले के लिए नाजिल किया था क्या? ठीक है, आप कर लें तिलावत के लिए, यानी हुस्ने क़िरात का जो मुकाबला है उसकी हम नफी नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि नहीं वो यानी कारियों के दरमियान जो है उस किस्म का मुसाबका होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहे हम, राइट, बच्चों में हो या बड़ों में हो, ये नहीं कह रहे, तिलावत को अच्छे से अच्छा बनाना ये चीज जो है वो मुस्तहब है, ये चीज जो है वो महमूद है, कि अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो कुरान मजीद की तिलावत को सीखना, और इसको एनकरेज करने के लिए, इसकी हौसला अफजाई करने के लिए जो है वो कारियों के दरमियान कुछ इस किस्म का मुकाबला भी हो सकता है, इसकी नफी नहीं कर रहे हम, इसकी नफी या हम इसके जो है वो मजम्मत कर रहे हैं कि इसके मौके के ऊपर आप जो है वो हंसना और मुस्कुराना और वाह 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 करना शुरू कर दें। जैसे कि कारी अब्दुल बासित की कोई रिकॉर्डिंग अगर आप सुने, तो वो कारी अब्दुल बासित साहब जो है वो अब्दुल बासित अब्दुल समद, वो लंबी सी कोई आयत की तिलावत करते हैं, और जब वो रुकते हैं तो सामईन के अंदर वाह की ऐसी जोरदार किस्म की गूंज उठती है। अब वो कौन सी वाली आयत है, कैसी वाली आयत है, क्या जन्नत वाली आयत के ऊपर वाह कर रहे हैं या जहन्नुम वाली आयत के ऊपर वाह कर रहे हैं, राइट? तो ये अल्लाह के कुरान के साथ जो है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बुरी यानी बुरा मामला है। तो इससे जो है वो हमें बचना चाहिए। अच्छा, कर भी कौन रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा जा रहा है, उर्दू स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग लोग जिनको कोई पता ही नहीं चल रहा कि कुरान मजीद में क्या पढ़ा जा रहा है, उसका मान ही क्या है। नहीं, हम ऐसे लोगों को देख चुके हैं जो कि अरब हैं, राइट? उनकी मादरी जुबान अरब है और अच्छे खासे पढ़े लिखे अरब हैं। ये नहीं कि हर अरबी को जो है वो कुरान मजीद समझ में आता है, नहीं, लेकिन फुसहा अरबी जानने वाले, कुरान मजीद की अरबी जानने वाले, ऐसे जो है वो मुस्कुरा रहे होते हैं, राइट? आजकल नशीद है आयात ऑफ कुरान और लोग झूम रहे होते हैं उसके अंदर। अब झूम रहे होते हैं इससे मुराद आपकी क्या है, कि वो यानी डांस कर रहे हैं, यानी वो तो जाहिर से बात है कि बुरी चीज है, लेकिन एक होता है ना कि आप उसमें गुम हो करके उसके माने के तदब्बुर के साथ जो है वो आपका सर ऐसे हिल रहा है, वो तो फिर बुरी बात नहीं कराएगी, लेकिन हम तो मुस्कुराने और हंसने की बात कर रहे हैं। तो कुरान मजीद क्या फरमाता है, यबकूना व यजीद हम खुशुआ। तफसीर मजहरी में है कि तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में नहीं जाएगा वो शख्स जो अल्लाह के खौफ से रोया जब तक के दोहा हुआ दूध दोबारा थनों में वापस ना लौट जाए। यानी जैसे ये नहीं हो सकता कि थनों से निकाला हुआ, यानी गायें बकरी, ठीक है ना, उनके थन से जो दूध निकाला जाता है तो उसको वापस डालना मुमकिन ही नहीं, राइट? उसको वापस डालना मुमकिन ही नहीं है। तो जिस तरह से ये नहीं हो सकता कि थनों से निकाला हुआ दूध फिर थनों में वापस डाल दिया जाए, इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नुम में चला जाए। ठीक है, अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नुम में चला जाए, क्या मतलब अल्लाह के खौफ से रोने वाला, राइट? जिस तरह शेर के खौफ से रोता है इंसान है, या जो है वो बिच्छू के खौफ से रोता है, या आग के खौफ से रोता है कि भाई उसको दुनिया के अंदर जो है ना वो कोई आग में फेंकने जा रहा था तो ये रोना शुरू हो गया, शेर के आगे डालने जा रहा था तो ये शेर के डर की वजह से रोना शुरू हो गया, राइट? या ये कि बैंकरप्सी का खौफ था तो इस वजह से रोना शुरू हो गया, तो इसी वजह से है ना, उसी तरीके से अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोना शुरू हो गया। नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ से रोने का मतलब क्या है कि अपने गुनाहों को सोच करके रोना, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ वर्जी जो कि वो करता रहा है उसके ऊपर नादिम होना, शर्मिंदा होना, हत्ता कि जो है वो आंखों से आंसू निकल आए, या अगर गुनाह नहीं भी कर रहा है तो अल्लाह की बेनियाजी के खौफ से रोना कि मैं कितना ही नेक बन जाऊं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कोई वाजिब नहीं होता कि वो मुझे जहन्नुम से बचा ले। अल्लाह ताला इतने बड़े हैं, इतने अजीम हैं, इतने खुद मुख्तार हैं कि वो मेरी तमाम तर नेकियों के बावजूद मुझे उठा करके अगर जहन्नुम में डाल दें तो किसी की मजाल नहीं है कि वो अल्लाह ताला से पूछे कि आपने कैसे इसको जहन्नुम में डाल दिया, राइट? कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे खिलाफ कोई फैसला कर दिया। इससे रोना या इस एहतमाल से रोना कि अभी तो मैं नेकी की जिंदगी गुजार रहा हूं लेकिन कल का मुझे कुछ नहीं पता कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो जाएगी, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो जाएगा कि जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला के मकबूज बंदों में शामिल कर दिया जाऊं, इस एहतमाल की वजह से, राइट? तो तीनों चीजें हैं, या तो गुनाह कर रहा है तो गुनाहों के ऊपर जो अजाब मिलता है उस अजाब के खौफ से रोना, ये अल्लाह के डर से रोना, या ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मेरी नेकी के बावजूद मुझे उठा करके जहन्नुम में डाल दें तो अल्लाह ताला से कोई नहीं पूछ सकता, यानी मैंने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल दें तो अल्लाह ताला कोई रोकने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है अल्लाह के खिलाफ। और तीसरा ये कि बेशक मैं अभी नेकी कर रहा हूं लेकिन कल को क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता ना। जैसे हम लोग कभी कभी जो है ना वो बोल जाते हैं गलती से, ठीक है ना, कि नहीं जी हम तो हमारी तो बड़ी नीयत बड़ी अच्छी है, हमारे दिल में तो कैसा कोई ख्याल ही नहीं, या हमारे बच्चे के बारे में है, नहीं, हमारा बच्चा तो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता। हमारा बच्चा तो ऐसा है, हमारा बच्चा तो वैसा है। बड़ा एतमाद, बड़ा एतमाद, बड़ा एतमाद, अपने ऊपर एतमाद या अपनी औलाद के ऊपर एतमाद, ठीक है, या अपने किसी करीबी के ऊपर एतमाद। नहीं जी, वो तो बुरा हो ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से जो है ना, वो फिर हम बड़े निडर हो जाते हैं कि हाँ भाई वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। वो हम ये नहीं कह रहे नहीं जाए, हम ये नहीं कह रहे नहीं जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस बंदे को जाना है अपने कमाई के लिए उसको तो जाना है, लेकिन उससे पहले आपने कोई तैयारी करी है कि नहीं करी है, कि वो बुरे माहौल से बचने के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसकी फिक्र ही नहीं करते, बस एतमाद करके बैठे हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, मेरा बच्चा तो चाहे जैसा भी माहौल हो वो तो बिगड़ ही नहीं सकता, या मैं चाहे जिस भी माहौल में चला जाऊं मैं तो बिगड़ ही नहीं सकता। तो हम ऐसे लोगों को फिर एक ही जवाब देते हैं, ठीक है ना, जो इतना पुर एतमाद होते हैं ना अपने बारे में या अपनी औलाद के बारे में, हमको एक ही जवाब देते हैं। हम कहते हैं कि बेशक आप बड़े अच्छे हैं, बेशक आप जो है ना वो बुरा काम नहीं करेंगे, हमें आपके ऊपर एतमाद है, लेकिन हमें शैतान के ऊपर एतमाद नहीं है, हमें शैतान के ऊपर एतमाद नहीं है कि वो आपको नहीं बहकाएगा, वो मुझे नहीं बहकाएगा, वो मेरे बच्चे को नहीं बहकाएगा, शैतान के ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते। तो इस तरह से सोचना कि बेशक अभी अगर मैं कोई गुनाह नहीं भी कर रहा, लेकिन शैतान तो इस मेहनत के अंदर लगा हुआ है और मुझे तो शैतान की तदबीरों का पता भी नहीं है। कल को अगर शैतान जो है मेरे ऊपर गालिब आ गया और मुझसे उसने कोई ऐसा गुनाह करवा दिया कि मैं अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो गया, फिर मेरा क्या बनेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला से कि खौफ से रोने का ये मतलब होता है, ठीक है, अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला की सजा से डर करके रोना। तो जो शख्स अल्लाह ताला के खौफ से रोया हो तो वो फिर जहन्नुम के अंदर नहीं जाएगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने दो आंखों, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ जो है वो मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहा है और दूसरी तरफ जो है ना वो क्या कहते हैं धड़ल्ले से गुनाह कर रहा है, राइट, बेखौफ होकर के गुनाह कर रहा है। और ऐसे भी लोग होते हैं, हमने बड़े देखे हैं ऐसे लोग, बड़े इस किस्म के नमूने जो है ना वो कल भी देखे थे और आज भी अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ जाता है कि बाकायदा दहाड़े मार मार करके रोना शुरू कर देते हैं, राइट, भां भां भां, जैसे है ना कोई छोटा बच्चा जो है ना रो रहा है, उस तरह से बड़े बड़े जो है वो मर्द, बड़े बड़े नौजवान जो है वो ऐसे रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका उसके एक लम्हा पहले और एक लम्हा बाद, इस पूरे रोने के जो ड्रामा हुआ है, इस ड्रामे से एक लम्हा पहले और एक लम्हा बाद ऐसे हालात होते हैं कि जैसे कोई मसला ही नहीं है ये, राइट। और गुनाह के बारे में जो उनका एटीट्यूड है, गुनाह के बारे में, अल्लाह की नाफरमानी के बारे में जो एक होता है इंसान के नजर आ जाता है भाई कि वाकई ये नादिम शर्मिंदा है, ये परेशान है अपने इस गुनाह के ऊपर, या ऐसा है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि मुनाफिक जो है उसके लिए गुनाह कैसा होता है कि नाक के ऊपर मक्खी बैठी उसको उड़ा दिया। कुछ पता चलता है आपको, नाक में मक्खी बैठी आपने उसको उड़ा दिया, तो कोई बोझ महसूस होता है, कोई फिक्र, कोई परेशानी महसूस होती है, नहीं। तो उसी तरीके से जो है वो गुनाह किया, गुनाह करे चले जा रहे हैं और गुनाह के बारे में जो है वो एक एटीट्यूड है कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन धाड़े मार मार के जो है वो हजरत के बयान में रो रहे हैं, या कोई नजम सुन ली, नशीद सुन ली, तो उधर जो है वो रो रहे हैं, नदामत नहीं है कोई भी, पशेमानी कोई नहीं है कोई भी, खौफ कोई नहीं है, ऐसे रोने की यहाँ पे बात नहीं हो रही। किस रोने की बात हो रही है? खौफ, नदामत, राइट, फिक्र के साथ रोना। ऐसा जो शख्स है ना जो कि खौफ और नदामत से रोए, तो भाई ये तो तौबा के लिए रो रहा है ना, ये तौबा के लिए रो रहा है, ये इसलिए नहीं रो रहा कि भाई क्या आपने कभी इंडियन, अल्लाह ना करे आपने कभी ऐसा किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इंडियन फिल्म का गाना सुन करके रोना आ जाता है, राइट, जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है वो अंग्रेजी के अंदर भी कोई गाना सुन करके रोना शुरू कर देते हैं, कोई सिट कॉमेडी, सिट कॉम जो है वो आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं बेहयाई से भरपूर, राइट, लेकिन कोई ऐसा मौका आ जाता है वो जिसके ऊपर लोग करते हैं, उसमें भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे तबीयत होती है कि आंसू में, आंखों में जो है ना वो ऐसे करके आंसू आते हैं, कोई मसला ही नहीं होता, वो तो हर मौके पे आते हैं, आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर नदामत तो नहीं है ना, इसके अंदर खौफ तो नहीं है ना, फिक्र तो नहीं है ना, तो ऐसे रोने की बात नहीं हो रही। नदामत खौफ अल्लाह के डर से, जहन्नुम के खौफ से रोना। तो जब कोई इंसान ऐसे रोता है ना, यानी तौबा का रोना जिसको कहते हैं, रिपेंटेंस का रोना जिसको कहते हैं, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे की तौबा को फौरन कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा को फौरन कबूल करते हैं। और तौबा को कबूल करने का मतलब क्या है? जितने पीछे गुनाह थे सारे के सारे माफ कर दिए, तो अब जो है वो क्यों जहन्नुम में जाएगा भाई? ये राइट, जब अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल कर लिया, अब जो है वो खामखा तो नहीं कि जहन्नुम में पॉपुलेशन कम हो गई थी तो चलो पॉपुलेशन को फिल करने के लिए जो है वो ताइबीन को भी जहन्नुम में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, तो इसी तरह यह नहीं हो सकता कि अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नुम में चला जाए। और एक रिवायत में यह है कि अल्लाह ताला ने दो आंखों पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए, दूसरे जो इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए रात को बेदार रहे। इन इस्लाम की सरहदों की हिफाजत के लिए रात को बेदार रहे। ठीक है, तो ऐसी आंख के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जहन्नुम को हराम कर दिया है। अब इस्लाम की सरहदें, ठीक है ना, ये तो अब जो मुमलकत खुदादाद वाले हैं वो अच्छी तरीके से जान गए होंगे, कम से कम मर्द तो जरा इन चीजों के बारे में जरा ज्यादा होते हैं। तो इस्लाम की फिर कौन कौन सी दो सरहदें होती हैं? मर्द हजरात से सवाल है, खवातीन भी दे सकती हैं, कोई उनको मना नहीं है। इस्लाम की दो किस्म की सरहदें होती हैं, कौन कौन सी दो किस्म की सरहदें? भाई सरहद की हिफाजत में जो जागता है उसके ऊपर जहन्नुम हराम, ठीक है ना। तो अब इस्लाम की दो किस्म की सरहदें होती हैं, कौन कौन सी दो किस्म की सरहदें होती हैं? मर्द तो शायद या तो है ही नहीं क्लास में, या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब। जी, एक होती है ज्योग्राफिकल, जुग्राफियाई सरहद, ठीक है, और दूसरी होती है नजरियाती सरहद, आइडियोलॉजिकल सरहद, ठीक है ना। ये दो सरहदें होती हैं, ये दो बाउंड्रीज होती हैं। तो ज्योग्राफिकल सरहद का मतलब कि इस्लामी मुमलिकत है जहां पर इस्लाम के अहकामात नाफिज हुए हुए हैं, तो अब इस मुमलिकत के जो बॉर्डर्स हैं, जिसके उधर भी काफिर रहते हैं इधर भी काफिर रहते हैं, इन सरहदों की हिफाजत में जो रात को जागेगा कि कहीं दुश्मन हमला ना कर दे, उस आंख के ऊपर अल्लाह ताला ने जहन्नुम को हराम कर दी। लेकिन आज कौन सी ऐसी इस्लामी सरहद है? वैसे तो यानी तावील कर कर करके आप कुछ बना सकते हैं कि हाँ नहीं है इस्लामी, ठीक है। बहरहाल, तो ये है जुग्राफियाई सरहद, होती है आज हो ना हो, लेकिन होती तो है ना, या होनी तो चाहिए ना कम से कम। लेकिन नजरियाती सरहद, नजरियाती सरहद का मतलब ये है कि जो मुल्हिदीन हैं, जो काफिरीन हैं, जो यहूद व नसारा हैं, वो इस्लाम के जो जो अकायद हैं और इस्लाम की जो 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 सुन्नतें हैं, तरीका है, कल्चर है इस्लाम का, और जो सोच और फिक्र आइडियोलॉजी है इस्लाम की, उसको खराब करने की कोशिश करते रहे। अब इस सरहद की हिफाजत कौन करता है? ये कोई मिलिट्री का कर्नल इसकी हिफाजत नहीं कर सकता, जनरल, कोई एडमिरल, कोई स्क्वाड्रन लीडर इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। इस सरहद की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ उलमाए हक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उलमाए हक इसकी हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सरहद असल सरहद है, ठीक है, क्योंकि अगर फिजिकल सरहद ना भी हो, किसी काफिर मुल्क में रह रहे हैं लेकिन अकायद की हिफाजत हो रही है, तो इंसान ईमान पर रहता है, और वो ईमान पे उसका खात्मा हो जाए तो वो जन्नत में जाने वाला का हकदार बन जाता है, ठीक है। तो ये वाली हिफाजत तो हर वक्त जारी रहती है, चाहे कोई इस्लामी मुमलिकत दुनिया में मौजूद हो या ना हो, रिगार्डलेस। तो इसकी हिफाजत के लिए जो उलमाए कराम फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, गलत फहमियों का इजाला करते हैं, उनको दूर करते हैं, और सही दीन के इल्म को जो है वो लोगों में फैलाने का काम करते हैं, और इसके लिए रातों को जागते हैं, इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। राइट, इस्लाम की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले के ऊपर, ठीक है। तो ये हदीस पढ़ के फिर अब इस पैराग्राफ को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर बात इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि हजरत नजर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में कोई अल्लाह के खौफ से रोने वाला हो तो अल्लाह ताला उस कौम को उसकी वजह से आग से निजात अता फरमाएंगे। ठीक है, यानी ये जो काम वो कर रहे हैं ना अल्लाह के खौफ से रोने का, तो इसका असर जो है वो पूरी कौम के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह के खौफ की वजह से वो रोते हों, क्योंकि वो हमारी भी बका का सबब बन रहे हैं, हमारी भी निजात का सबब बन रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से कभी भी महरूम ना फरमाए। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।